नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि राष्ट्र प्रथम और वसुदेव कुटुम्बकम भारतीय विदेश नीति के दो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए नेता चुना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आज दोहा में फीफा विश्व कप 2026 एएफसी क्वालिफायर के दूसरे दौर में भारतीय फुटबॉल टीम का मुकाबला मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के मंत्रियों के विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, निर्मला सीतारमन को वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने श्री वैष्णव का स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री वैष्णव ने कहा, जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में श्री मोदी ने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए हैं। वे भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर ले आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संचार मंत्री का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभाग में एक क्रांति देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे कि वो प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करें। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और यादव प्रताप राव गणपत राव भी उपस्थित थे। भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। अन्नपूर्णा देवी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद संभाला। शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगी सरकार और तेज गति से कार्य करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि विभिन्न मंचों और पहलुओं के माध्यम से मंत्रालय ने भारत की एक अनूठी तस्वीर बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय बड़े पैमाने पर विकसित भारत में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वो कर्म ही पूजा है की अवधारणा में विश्वास रखते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों से प्रेरणा मिली जब प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें गरीबों के कल्याण के लिए काम करने के लिए उनके दृष्टिकोण के लिए विभाग दिया जा रहा है। किरण रिजिजू ने आज संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। श्री रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से संसद को सुचारू रूप से चलाने में उनके सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में संसद में होने वाली चर्चा में सभी सदस्यों का उद्देश्य देश की सेवा करना होगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा उनके मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3-0 की विदेश नीति बहुत सफल रहेगी। आज सुबह कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि राष्ट्र प्रथम और वसुदेव कुटुम्बकम भारतीय विदेश नीति के दो मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अन्य देशों को लगता है कि भारत वास्तव में उनका मित्र है जो संकट के समय उनके साथ खड़ा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की पहचान और बढ़ेगी। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए नेता चुना गया है। विजयवाड़ा में हुई टीडीपी जनसेना और भाजपा विधायकों की बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से नायडू को चुना। जनसेना पार्टी प्रमुख और पितापुरम से विधायक के पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए के नेता के रूप में चंद्रबाबू नायडू के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी एनडीए विधायकों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में एनडीए ने 164 विधानसभा सीटों के साथ बहुमत से बड़ी जीत हासिल की। जनसेना पार्टी के विधायकों ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश विधानसभा का नेता चुना गया। जनसेना तेनाली के विधायक एन मनोहर ने पवन कल्याण का नाम प्रस्तावित किया और अन्य नेताओं ने उनका समर्थन किया। 175 सदस्य विधानसभा में जनसेना के 21 विधायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रम में प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। परीक्षा में कदाचार और धोखाधड़ी की शीघ्र और गहन जांच करने के लिए छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें परीक्षा के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अगले शैक्षणिक वर्ष के साल में छात्रों को 2 बार प्रवेश देने की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में यूजीसी 1 वर्ष में 1 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि इससे उन छात्रों को अधिक फायदा मिलेगा जिनके बोर्ड परिणामों की घोषणा में देरी हो जाती है या जो स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत कारणों से प्रवेश लेने से जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मई में एक बड़े भू चुंबकीय तूफान के दौरान आदित्य L1 उपग्रह द्वारा ली गई सूर्य की आश्चर्यजनक तस्वीरें जारी की है। 2 रिमोट सेंसिंग पैनल और 16 अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ने अन्य पैलोड के साथ अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु से इन तस्वीरों को खींचा है। इसरो ने कहा है कि ये तस्वीरें खगोल वैज्ञानिकों को सौर ज्वालाओं, उनके ऊर्जा वितरण, सनस्पॉट, व्यापक तरंग और दीर्घकालिक सौर विविधताओं का अध्ययन करने में सहायता करेगी। ये तस्वीरें इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आज दोहा में फीफा विश्व कप 2024 AFC क्वालिफायर के दूसरे दौर में भारतीय फुटबॉल टीम का मुकाबला मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:15 बजे शुरू होगा। क्वालिफायर के तीसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत को ग्रुप ए में शीर्ष 2 स्थानों में से 1 हासिल करना होगा। इस महत्वपूर्ण मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू करेंगे। मौजूदा ग्रुप ए में कतर 13 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और अगले दौर के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत फिलहाल 5 मैचों में 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और गोल अंतर के आधार पर तीसरे स्थान पर मौजूदा अफगानिस्तान से थोड़ा आगे है। कुवैत 4 अंकों के साथ 4वें स्थान पर है। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने विश्व के कई भागों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कूटनीति, समावेशी बातचीत और विचार विमर्श के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्रियों ने कल रूस के निजनी नोवगोरोड में बैठक की और वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। एक संयुक्त वक्तव्य में विदेश मंत्रियों ने संघर्ष की स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रति पूर्ण सम्मान और मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप मानवीय सहायता के प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले हिस्से में विशेष रूप से इजरायली सैन्य अभियान के कारण गाजा पट्टी में हिंसा में बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्पों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2720 को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। गाजा पट्टी में फलस्तीनी आबादी को सीधे तौर पर तत्काल मानवीय सहायता का आह्वान किया और अवैध रूप से बंदी बनाए गए सभी लोगों की तुरंत और बिना शर्त रिहाई की मांग भी की। मंत्रियों ने हेती में भी सुरक्षा, मानवता, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में लगातार आ रही गिरावट पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।